मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 31 दिसंबर 2015 है, साल का अंतिम दिन, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 8-9 जवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं सत्यजीत शुक्ला, आप दिल्ली से हैं, रवि दास सिरसा हरियाणा से हैं, प्रियंका गंगवार दिल्ली से हैं, माही शर्मा आप भी दिल्ली से हैं, आलोक सिंह गुड़गांव से हैं, मोना सिन्हा पटना से हैं, सोनम मिश्रा जयपुर से हैं और सुरेश पांडे कानपुर से हैं। तो सत्यजीत, रवि, प्रियंका, माही, आलोक, मोना, सोनम और सर्वेश, सॉरी वो सुरेश नहीं है, वो नाम है सर्वेश, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन थोड़ा सा भावुकतापूर्ण दिन है, आप समझ सकते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। सन 2015 के साथ हमने 365 दिन गुजारे हैं। नो डाउट कि वैसे तो कोई भी दिन वापस नहीं आता, लेकिन जब हम इसको सालों में सोचते हैं कि कोई भी साल वापस नहीं आता, तो मन थोड़ा सा कहीं न कहीं तो गमगीन तो हो ही जाता है, भर तो आता ही है। और सच पूछिए तो आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से मुझे 2015 वर्ष को विदाई देते हुए लगभग कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है, जैसे कि हम किसी अपने बहुत प्रिय को एक ऐसी विदाई देने जा रहे हों जिसमें मिलन के क्षण दोबारा कभी नहीं आने वाले। लेकिन दोस्तों, फिर एक खुशी भी होती है, खुशी इस तरीके की होती है कि एक नया वर्ष हमारे स्वागत के लिए तैयार है, या कह लीजिए कि हमारे अपने घर, अपना दिल, अपना दिमाग भी नए वर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से अतीत, भविष्य और वर्तमान का लगातार क्रम जीवन में जारी रहता है मित्रों, और मुझे सच में इस बात की बेहद खुशी है कि आप सब इस डेली ऑडियो गाइडेंस को केवल सिविल सर्विस तक सीमित नहीं रख रहे हैं, उसे अपने जीवन से भी जोड़कर देख रहे हैं। मित्रों, मेरा तो ये मानना ही है, हम जो कुछ भी करते हैं अंततः जीवन के लिए ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबके इस स्वागत के बाद अब मैं आता हूं अपने अगले चरण पर, और हम लोग लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत बाजीराव मस्तानी फिल्म के बारे में दोस्तों बातें कर रहे थे, और मैंने आप लोगों को कल ये दो पॉइंट खासकर बताने की कोशिश की थी, वो ये कि किस तरीके से जो पेशवा बाजीराव हैं वो अपने इमोशनल एनर्जी और जो मेंटल एनर्जी होती है उन दोनों को साथ लेकर चलते हैं, उसके कुछ मैंने नमूने भी दिए थे, आज भी हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कही थी मित्रों, अगर आप उसे महत्वपूर्ण समझते हैं तो वो ये कि समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका जो मूल्यांकन हम करते हैं, हमारा दिमाग करता है या समाज की सामूहिक चेतना करती है, उसका आधार उसके अपने एथिकल वैल्यूज होते हैं। हम उसके अंतर्गत उस युग के एथिकल वैल्यूज को नहीं लेते, या कह लीजिए कि सार्वजनीन एथिकल वैल्यूज को नहीं लेते, या कह लीजिए कि प्राकृतिक एथिकल वैल्यूज को नहीं लेते, हम अपने एथिकल वैल्यूज को लेते हैं और उसी के आधार पर या तो किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे लगता है मित्रों कि यहां हम सबको चाहिए कि हम अपनी चेतना को विस्तार दें, मन को उदार बनाएं और चीजों को थोड़ा सा प्राकृतिक दृष्टि से भी सोचने की कोशिश करें। तो इस खासकर पिछले ऑडियो की थोड़ी सी व्याख्या करने के बाद मित्रों, अब मैं आज की बात पर आता हूं। दोस्तों, हम लोग एक फिल्म पर बात कर रहे हैं और मैंने कहा है कि इस फिल्म पर कितनी भी बातें की जा सकती हैं, इसी फिल्म पर नहीं, किसी भी फिल्म पर कितनी भी बातें की जा सकती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, यहां मैं एक चीज आप लोगों से और एक बात शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि जो फिल्म है उस हर फिल्म में एक जिंदगी होती है, एक जीवन होता है। और मैं ये मानता हूं दोस्तों कि हर जीवन में एक फिलॉसफी होती है, एक जीवन दर्शन होता है, एक फार्मूला होता है, जैसे कि गणित का फार्मूला होता है, गणित के सूत्र होते हैं। यह बात अलग है कि हम उन गणित के सूत्रों को, उस फार्मूले को, उस जीवन दर्शन को कितना पकड़ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। और दोस्तों ये फिल्म के साथ ही नहीं है, आपका अपना भी जो जीवन है, याद रखिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन है, वो अपने आप में एक फिलॉसफी है। उसके अंदर से पता नहीं जीवन दर्शन के कितने सूत्र निकाले जा सकते हैं। और हम खासकर पेशवा बाजीराव मस्तानी फिल्म के अंतर्गत के अंदर से कह लीजिए कि इसी तरह के कुछ सूत्र निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जीवन के बारे में हम मोटे मोटे तौर पर तो ऊपर देखते हैं, समझते हैं, लेकिन जब उसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे जीवन और कुछ नहीं, एक नदी की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह, फ्लोइंग रिवर है। नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है और अंत में जाकर के कहीं भी गिर जाती है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या हिंद महासागर हो या अरब सागर हो, कहीं जाकर के गिर जाती है। मतलब एक उसका उद्गम होता है और इसके बाद उसका अंत होता है। और नदी अपना रास्ता अपने आप बनाते टटोलते चलती है, फिर वो चाहे कहीं मुड़ेगी, रुकेगी, जैसे भी करे वो अपना रास्ता खुद ढूंढती है। अब सवाल यह है कि नदी ने ये जो अपना रास्ता ढूंढा है, क्या इस रास्ते को ढूंढने का कोई शास्त्र है, कोई ग्रामर है, कोई फार्मूला है, कोई फिलॉसफी है? मैं तो थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी पर जाना होगा। है, इस नदी का भी अपना शास्त्र है, अपना फार्मूला है, इसका भी अपना सरगम पधनिशा है। नदी कैसे अपना रास्ता बनाएगी, उसके लिए बहुत से फैक्टर्स काम होंगे, काम आएंगे। नदी को जहां ढलान मिलेगी नदी उधर जाएगी, नदी को जहां नर्म मिट्टी मिलेगी वो उसको तटों से ज्यादा काटेगी, जहां उसको चट्टान मिलेगी तो वहां नदी उसके तल को ज्यादा काटेगी, और जिसको नदी काट ही नहीं पाएगी तो पता लगा कि वहां नदी टर्न ले लेगी। तो इस तरह के दोस्तों ये जो फैक्टर्स हैं कि नदी कहां तेज बहेगी, कहां धीमी बहेगी, कहां टर्न लेगी, कहां गहरी होगी, कहां चौड़ी होगी, कहां किसी दूसरे से संयोग स्थापित करेगी, और फिर कहां जाकर उसका अंत होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी है, जो आपका भूगोल शास्त्र है, वो काम करता है? या कि नदी अपने मन से जो चाहती है वो कर लेती है? ऐसा नहीं होता मित्रों। नदी का अपना एक प्रवाह का सिद्धांत है और उसके तहत नदी काम करती है, और हम सबका जीवन भी कहीं ना कहीं उसी तरह के सिद्धांतों के तहत काम करता है। और सच पूछे तो लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग इसी तरह के कुछ सिद्धांतों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बाजीराव मस्तानी फिल्म में मैंने जो भावनात्मक और मानसिक इंटीग्रेशन की जो बात कही थी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आपके जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर है मेंस का, उसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस का, भावनात्मक प्रज्ञा जिसे आप हिंदी में कहते हैं, ये पूरे का पूरा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्या आपको कल के लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में उसकी झलक नहीं मिली? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? मतलब आप किसी भी घटना को, किसी भी समस्या को न तो केवल बौद्धिक स्तर पर देखेंगे, इंटेलिजेंस के स्तर पर देखेंगे, और न ही आप उसे प्योरली इमोशनल लेवल पर देखेंगे, पूरी तरह से भावनात्मक स्तर पर देखेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जहां भावनात्मकता की जरूरत है वहां वो प्रोमिनेंट होगा, इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जहां इंटेलिजेंस की ज्यादा जरूरत होगी वहां इमोशनल कम हो जाएगा और इंटेलिजेंस प्रोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी घटना, कोई भी समस्या 100% इमोशनल होती है या 100% इंटेलिजेंट की होती है। तो हम जो बाजीराव मस्तानी फिल्म के जो पेशवा बाजीराव हैं, जिस तरीके से उनको डिपिक्ट किया गया है वहां, दोस्तों इस भावनात्मक प्रज्ञा का एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। और मैं जानबूझकर यह बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप मेरी बातों से, चाहे मैं लाइफ मैनेजमेंट की बात करूं, AIR न्यूज की बात करूं, चाहे मैं ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में जीवन की बात करूं या न्यूज़पेपर्स की बात करूं, आप इनफैक्ट ये समझ सकें कि किसी भी इश्यू को देखा कैसे जाता है, किसी भी इश्यू को समझा कैसे जाता है, अपने सिविल सर्विस के उत्तर के लिए कहां से चीजें निकाली जा सकती हैं और कैसे निकाली जा सकती हैं। तो चूंकि ये बहुत अलग अलग डायमेंशंस हैं और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए इन चीजों की जरूरत भी होती है, ये चीजें आपके पास जितनी ज्यादा होंगी सफलता आपके उतनी करीब होगी, इसलिए खासकर मैं इनको अलग अलग सब्जेक्ट तो होते हैं, अलग अलग इनके स्टेजेस तो होते हैं, लेकिन उन मेरा जो दृष्टिकोण होता है वो डेफिनेटली बिल्कुल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ही होता है। और नो डाउट कि मेरे लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी जीवन का पार्ट है, या कह लीजिए कि जीवन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो दोस्तों आप एक दो मैं आपको और उदाहरण दूंगा, वक्त ज्यादा नहीं है। आपको एक घटना याद आ रही होगी जो फिल्म के बिल्कुल उत्तरार्ध में ही है, खत्म होने से ठीक थोड़ी देर पहले, थोड़ी सी देर पहले यह घटना घटती है फिल्म में, कि किस तरीके से अंत में बाजीराव परेशान होकर के अपने घर वालों से और लोगों से जो उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, खासकर मस्तानी के मामले को लेकर के वो अपना त्यागपत्र जैसा देते हैं और जाकर के अलग रहने लगते हैं। इतने में आप देखते हैं कि कैसे उनके राज्य पर एक अटैक होने वाला है, और फिर एक उनका सेना नायक जाता है और कहता है कि इस पर अटैक होने वाला है और हम गुलाम बन जाएंगे, आपको युद्ध लड़ना है, आपको सेनापति का कार्यभार संभालना है। और वहां बाजीराव कहते हैं कि मैं तो अब कुछ भी नहीं हूं, मैं कहां सेनापति हूं, ना मैं पेशवा हूं ना मैं सेनापति हूं। आप देखेंगे वहां की दो घटनाएं जो मैं आपको भावनात्मक जो प्रज्ञा होती है उसके उदाहरण दे रहा हूं। तो आपको आप उस सीन को याद करने की कोशिश कीजिए, अभी जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे कहीं ना कहीं रोएं खड़े हो गए हैं, मैं रोमांच महसूस कर रहा हूं। मित्रों की पेशवा खड़े होते हैं और सामने वाले से जब बात करते हैं तो उनकी आवाज में वो लड़खड़ाहट है, मतलब इस उनकी आवाज की लड़खड़ाहट को सुनने के बाद वो साफ कहता है कि सर कि पेशवा आपने पी रखी है और आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं। वर्ड यूज करता है कि कदम लड़खड़ा रहे हैं, मतलब वो कह रहा है कि आप अभी अपनी सामान्य मानसिकता में नहीं है, आप पर नशे का असर है, मदिरा ली है आपने। लेकिन आप उसी समय देखें कि कितना वो जोरदार प्रसंग है, कितना गजब का प्रसंग है मित्रों, कि पेशवा अपनी तलवार निकालते हैं और उस पर से एक दीपक को उठाते हैं और उसको ले जाकर के सामने देखते हैं। वो तलवार बिल्कुल भी नहीं कांपती, दीपक उस पर से गिरता नहीं है, और इसके बाद फिर वो उसको घुमाते हैं चारों तरफ से, वो करते हैं, इसके बाद भी दीपक नहीं गिरता है, और इसके बाद दीपक को उछालते हैं और तलवार से काटकर अलग कर देते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि मेरे कदम भरे ही लड़खड़ा रहे हों लेकिन मेरे मस्तिष्क पर पूरी तरह से मेरा ही नियंत्रण है और ये इसका प्रमाण है। तुमको लग रहा है कि मैं लड़खड़ा रहा हूं, ये जो लड़खड़ाना है ये इमोशन है, और तलवार के ऊपर जो दीपक का संतुलन वो जबरदस्त रूप से करके दिखाते हैं वो अपने मस्तिष्क का स्वयं पर नियंत्रण है। दोस्तों ये पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण देखिए कि जिस राज्य ने उनको इतना मस्तानी के मामले को लेकर के बहुत सम्मान भी दिया, प्यार भी दिया, जलील किया, छोड़ करके अलग होना पड़ा, पूरा ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ है, उनकी मां उनका पूरा परिवार उनके खिलाफ है, बेटा तो बहुत बुरी तरह से खिलाफ ही है, और यहां तक कि उनका पूरा पूरा मंत्रिमंडल और जो दूसरे लोग हैं वो सब भी उसके खिलाफ है, इसी वजह से तो पेशवा छोड़कर अलग हो जाते हैं। लेकिन उनकी उदारता देखिए, उनकी प्रज्ञता देखिए कि ये तो भावनात्मक है, जो वहां से अलग हुए हैं वो एक भावनात्मक डिसीजन है, लेकिन इसी भावनात्मक डिसीजन पर वो अड़े नहीं रहते कि जाओ अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लड़ो तुम, जाकर के गुलाम हो जाओगे तो मुझे कोई परवाह नहीं। आप देखते हैं कि वो अनुमति देते हैं कि नहीं मैं लड़ूंगा, ये प्रज्ञा है, इंटेलिजेंस है, कि ठीक है मैं भावनात्मक रूप से जलील हुआ हूं, परेशान हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं है, अपने स्टेट से प्यार नहीं है, अपने लोगों से प्यार नहीं है, वो मेरा दायित्व है, मैं अपने उस दायित्व बोध से पीछे नहीं हटूंगा, और वो युद्ध में भाग लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जीवन कैसे कैसे बहता हुआ, कहां कहां से मोड़ लेता हुआ और एक नदी की तरह फ्लो होता है, आगे बढ़ता जाता है। आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे क्या होने वाला है? दोस्तों आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो नदी है वो जानती है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा, बशर्ते कि मैं चलती रहूं। अगर मैं चलती रहूंगी तो मुझे मेरा महासागर मिल जाएगा, एक जल का इतना बड़ा कुंड मिल जाएगा, जल का इतना बड़ा स्टोर मिल जाएगा, जहां मैं जाकर अपने को समर्पित कर सकूंगी और बड़ा कहलाने लगूंगी। जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र कहलाने लगती है। तो मित्रों ये लाइफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ मैंने आज अलग तरीके से आप लोगों से अपने थॉट्स शेयर करने की कोशिश की है। अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, अभी दो चार दिन मैं इस तरह की बातें करूंगा ताकि आपके दिमाग में वो ये सत्य बैठ जाए कि इस बार सिविल सर्विस मेंस का जो पेपर्स थे वे पिछले साल दो सालों की तुलना में थोड़े से डिफरेंट थे, थोड़े से अलग थे। यानी कि कोई बहुत ज्यादा अलग थे लेकिन थोड़ा सा अलग था, शेड्स का फर्क था। तो अब मैं उस शेड्स को अपना आधार बना करके अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, आज के कल के AIR न्यूज में ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं और उनकी संख्या बहुत है, एक दो नहीं है, उनकी संख्या बहुत है। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं और आप तो जानते ही हैं कि सिविल सर्विस में जो आपको तैयारी करनी है वो टॉपिक्स के आधार पर ही करनी है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के चलना है, क्वेश्चन को तो आधार बना करके अगर आप तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये शायद नीति बहुत अच्छी नहीं होगी मेरी दृष्टि में, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आप नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता। हाँ, किस टॉपिक से पूछा जाएगा इसका अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, इसीलिए हमारी तैयारी टॉपिक पर होनी चाहिए, क्वेश्चंस पर नहीं। ये तो मुझे लगता है कि आपकी नीति ही होनी चाहिए। देखिए, पहली जो खबर थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की खबर थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक रिव्यू लिया है। उसमें उन्होंने नाम भी बताए कि सड़क है और बंदरगाह है और एयरपोर्ट है, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से होते हैं। उसके बारे में उन्होंने एक तरीके से रिव्यू किया है कि हम कहां और कैसे चल रहे हैं कुछ स्टेट्स के। दोस्तों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर आप अखबारों में देखेंगे जब भी भारत के आर्थिक विकास की बात होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है, तो हमेशा एक सवाल उठता है कि हमारे पास आधारभूत संरचना क्या है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम आर्थिक रूप से उस तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए आप देखिए कि जब स्टेट के बारे में बात होती है कि वो स्टेट क्यों पिछड़ा हुआ है, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड क्यों नहीं हुआ है या कम क्यों है, वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट में कम क्यों आ रहे हैं, तो वहां भी फिर यही बात आती है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, सड़कें नहीं है, बंदरगाह नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं है, बिजली नहीं है, ये सब के सब इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पास इसका अलग से पेज सुरक्षित होना चाहिए। इसके बाद मित्रों, जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर थी वो खासकर एयर पॉल्यूशन को लेकर के था, वायु प्रदूषण को लेकर के था। आपने देखा है कि अभी जो एग्जाम हुए हैं दिसंबर में, उसमें वायु प्रदूषण पर पूछा भी गया है, सीधे सीधे एयर पॉल्यूशन पर पूछा गया। लेकिन आप देखिए कि वो पूछा किस तरीके से गया है। उसमें तीन चार महानगरों के नाम हैं और उसमें यह कहा गया है कि इन महानगरों की तुलना में दिल्ली में यह वायु प्रदूषण ज्यादा क्यों है, और नो डाउट कि यह कंटेम्प्रेरी है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर के कितनी टिप्पणियां हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और दूसरों की आपको मालूम ही है, कितनी कोशिशें हो रही हैं उसको रोकने के लिए। शुरुआत में मेट्रो चली, CNG आई और इसके बाद अब जो सम और विषम संख्या की गाड़ी का सवाल चलने का सवाल आ गया था, तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक था। तो टॉपिक के रूप में एयर पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अगर हम एनवायरमेंटल के हिसाब से देखें तो, चूंकि हॉट था, ये लगातार इस पर बात हो रही थी, ज्वलंत समस्या थी। लेकिन जो उन्होंने एंगल दिया उस एंगल को चेंज कर दिया कि और जो दूसरे महानगर हैं जिनकी आबादी कोई दिल्ली से बहुत ज्यादा अंतर में नहीं है, जैसे मुंबई को ले लीजिए तो मुंबई की आबादी तो ज्यादा ही है, ऑलमोस्ट आसपास ही होगी, कलकत्ता की आबादी भी कोई बहुत कम नहीं, तो वहां वायु प्रदूषण इतना नहीं है जितना दिल्ली में है, उसका क्या कारण है, यह टॉपिक पर होता है मित्रों। तो ये तो टॉपिक हो गया। अब आप देखिए कि इसमें कंटेंट की क्या मतलब चीजें हमें जानने को मिलती हैं न्यूज में, कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि कैसे जो NCR जो दिल्ली का हिस्सा है और उसके आसपास के जो राज्य हैं उसके लिए उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि वो अपने यहां वायु प्रदूषण को नियंत्रित करें। तो ये एक कोशिश हो रही है और ये एक बहुत अच्छा साइन भी है मित्रों कि इधर दिल्ली की जो सरकार है वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगी हुई है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का भी उसको इस तरीके से सहयोग मिल रहा है, क्योंकि वायु तो हमारी सीमाओं को नहीं जानती कि यहां से दिल्ली राज्य शुरू हुआ और यहां से हरियाणा खत्म हो गया और यहां से पंजाब शुरू हो गया, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक था दोस्तों, मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो श्रमिक कल्याण को लेकर के है। हमारे वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट रहा है कि जो श्रमिकों का जो कल्याण है, और अगर हम उनकी वेतन वृद्धि के बारे में सोचते हैं कि उनकी वेजेस बढ़नी चाहिए मजदूरों की, श्रमिकों की, तो वो तभी संभव है जब हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है, अभी जो भी हम आर्थिक वृद्धि दर 7.5-8 के करीब, 7 और 8 के बीच में हम चल रहे हैं, उसमें 1.5% की अतिरिक्त जरूरत है। यानी कि मान लीजिए कि अगर हमारी अभी वृद्धि दर 7% है, तो अगर वो 8.5% हो जाए तो फिर हम श्रमिक के कल्याणों के लिए ज्यादा, श्रमिक के कल्याण के लिए ज्यादा कर सकते हैं और उनकी जो वेजेस हैं उसमें भी, उसको भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो श्रमिक का टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक सबसे अधिक होते हैं। नंबर 1, श्रमिक कानूनों में सुधार। ये सिविल सर्विस की दृष्टि से बता रहा हूं, श्रमिक कानूनों में सुधार, ये इसका एक पॉइंट बनता है। दूसरा जो पॉइंट बनता है वो है इनका कल्याण, क्योंकि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन की बात होती है तो फिर इनके कल्याण की भी बात होती है। हालांकि शुरू से समाजवादी देश हमारा रहा है, श्रमिकों के कल्याण से संबंधित ही ज्यादातर कानून है, जिसकी वजह से अब आर्थिक गति कम पड़ रही है, या कह लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के दौर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है श्रमिक कानूनों के कारण, इसके बारे में आप जानते ही हैं। तो आपको यह देखना होगा कि किस तरीके से जो आप श्रमिकों के से संबंधित कानूनों में संशोधन करेंगे तो उनके कल्याण में कोई बाधा न पड़े, ये दूसरा पॉइंट होता है, कल्याण में ही वेतन वृद्धि की बात आती है। और तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट इसका जो ब्रांच इस टॉपिक की जो बनता है वो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है। और आप जानते हैं कि भारत में तो हार्डली 5% ही मजदूर संगठित क्षेत्र में है, बाकी 95% तो पूरे असंगठित क्षेत्रों में ही काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा चंक तो वहां असंगठित क्षेत्र में, जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो वित्त मंत्री जी ने उधर भी इशारा किया था, तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी समझ इस पर होनी चाहिए। इसके बाद एक बहुत छोटी सी ही खबर थी, लेकिन लाइन थी, लेकिन मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट लाइन थी, वो ये थी कि जो कलकत्ता है दोस्तों, एक समय में इतना बड़ा औद्योगिक शहर था और वेस्ट बंगाल तो औद्योगिक नगरी थी, और आप सोच करके देखिए कि अंग्रेज पूरे के पूरे उससे कितना घबरा गए थे बिहार और बंगाल से, कि उन्होंने विभाजन की बात की थी 1905 में जब लॉर्ड कर्जन आए थे, और वहां से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ एक तेज रोष भरा आंदोलन की लगभग शुरुआत हो गई थी। वो बंगाल धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइज्ड होता चला गया है, वहां से उद्योग बाहर जाने लगे हैं और जो थे वो बंद हो गए हैं। और जो वेस्ट बंगाल था उसमें 2 उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट थे, सबसे बड़े थे, और वो था एक जूट उद्योग, जिसको आप क्लॉथ मिल कह लें, कपड़ा उद्योग कह सकते हैं, तो दूसरा चाय उद्योग, इधर दार्जिलिंग और पूरा बेल्ट और वहां जो चाय के बड़े बड़े बागान थे, तो ये 2 उद्योग वहां बहुत बड़े थे। और आप देखते हैं कि किस तरह से जो पूरे के पूरे कलकत्ता में आप देखेंगे कि इधर जयपुर हरियाणा के जो व्यापारी थे जिनको हम मारवाड़ी कहते हैं, वो कलकत्ता उस समय शिफ्ट हुए और उन लोगों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां शुरू की, अपनी गद्दी मतलब अपने केंद्र बनाए, और देखते देखते वेस्ट बंगाल को देश का सबसे बड़ा, एक दूसरा नंबर का औद्योगिक शहर बना दिया। तो अब वही उद्योग कोलकाता कह लीजिए कि जूट एवं चाय उद्योग वहां के बंद हो रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन उद्योगों को वहां पनपने नहीं दे रहे हैं। वैसे अगर आप 2014 के मेंस का पेपर देखेंगे तो उसमें खासकर ये जो चाय उद्योग है उसको लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि उसका प्रश्न का जो झुकाव था वो बड़े डिफरेंट तरीके से था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी एरिया के बारे में था, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे पूरे के पूरे चाय के बागान हैं उसी को लेकर के एक क्वेश्चन था भी। इसके बाद मित्रों, एक बहुत अच्छी खबर थी न्यूज में ही कि छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उन सब पर, उन बिल्डिंग्स पर सौर ऊर्जा पैनल्स लगाए जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय, और ये जो है 1 जनवरी से लागू भी होने वाला है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा डिसीजन है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने एक तरह से लीड लिया है, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, आप लोगों को भी आश्चर्य नहीं होगा यदि अब धीरे धीरे दूसरे राज्य भी बहुत तेजी के साथ इस तरह के निर्णय लें। क्योंकि मित्रों देखिए, जो बिजली है, चाहे वो पानी से बने चाहे वो कोयले से बने, सवाल इसका नहीं है कि हमारे पास बिजली है या नहीं है या उसकी शॉर्टेज है, इसका भी है कि जो थर्मल पावर से सबसे ज्यादा बिजली हमारे यहां थर्मल पावर से बनती है, लगभग 70% बिजली थर्मल पावर से है, तो उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि पेरिस सम्मेलन में भी प्रदूषण को लेकर कितने चिंतित हैं, और दिल्ली को भी आप देख ही रहे हैं, पूरी पीढ़ी इसको लेकर के सफर कर रही है और चिंतित है। तो ऐसी स्थिति में जो सौर ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा के जो अक्षय स्रोत हैं, वही हमारे एक तरह से आस्था के आधार बनते हैं, भविष्य की संभावनाएं बनती हैं, और सारी चीजें हमारे पास हैं, सौर ऊर्जा से, सूर्य की किरणों से, सूर्य की गर्मी से ऊर्जा प्राप्त करने की हमारे पास तकनीकी है, बस ये कि वो महंगी काफी है। तो अगर थोड़ी सी उसकी अधिक कीमत भी चुकानी पड़े, खासकर पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से, तो ये सौदा कुल मिलाकर के महंगा नहीं है, और एटलीस्ट सरकार तो ऐसा कर ही सकती है। सरकार ऐसा करेगी तो डेफिनेटली फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी उसको फॉलो करेंगे, और तभी जाकर के कहीं ना कहीं इस पर्यावरण प्रदूषण को हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। मित्रों, एक और खबर थी आज, मैंने जैसा कि कहा कि आज बहुत सी खबरें हैं, वो है तमिलनाडु की खबर थी। उसमें देखिए अब आपको क्या पढ़ना है, क्या जानना है। उसमें एक बहुत अच्छी खबर थी, आप फिर से आपने देखा कि तमिलनाडु में इससे पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई, अभी फिर बारिश शुरू हो गई थी, और उस बारिश का कारण था उत्तर पूर्वी मानसून, और इस पर क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड भी किया था, उत्तर पूर्वी मानसून। अगर आप न्यूज को जरा सा भी ध्यान से सुनेंगे तो वहां फिर आपको एक फैक्टर मिलेगा, और उसमें यह कहा गया कि अभी तक तमिलनाडु में जो बारिश हुई है, मतलब 31 दिसंबर 2015 तक, यानी कि 31 दिसंबर वर्ष हटा दीजिए, उसको टेक्निकली नाम दिया गया उत्तर पूर्वी मानसून से हुई बारिश, और स्पष्ट रूप से कहा गया कि कल से जो बारिश होगी उसे शीतकालीन मानसून का नाम दिया जाए, शीतकालीन वर्षा का नाम दिया जाएगा, वो शीतकालीन वर्षा हो जाएगी। तो ये जो है, तो आपको चाहिए कि तमिलनाडु या हमारे जो साउथ और समुद्र तटीय क्षेत्र है, केवल तमिलनाडु नहीं, फिर वो आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा आ जाता है, थोड़ा सा हिस्सा कर्नाटक का भी आ जाता है जो समुद्र तट का हिस्सा है, खासकर पूरा का पूरा वेस्ट पार्ट, नॉट ईस्ट पार्ट, इसमें किस किस तरीके से बारिश होती है उसको थोड़ा सा आप देख लें। वैसे भी तमिलनाडु में जो बारिश होती है उसको लेकर के आपके प्रीलिम्स में 2015 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है जो इसी से रिलेटेड है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि एक मौका है कि आप देख लें कि तमिलनाडु में जो बारिश होती है कब कब होती है, किन किन मानसून से होती है, क्यों क्यों होती है, तो इस पर आपकी ज्योग्राफी की एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप उस तरह से तैयारी करने के बारे में मत सोचिए कि जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ूंगा और तब मैं उसको देख लूंगा और समझ लूंगा, वो मुझे लगता है कि तैयारी तो हो जाती है लेकिन शायद ये ज्यादा अच्छी नीति होगी, क्योंकि इसके पूछे जाने की क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, और अभी आप इसको तैयारी करेंगे एक ही टॉपिक को तो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे तरीके से बैठेगा भी, और इसका फायदा आपको परीक्षा में मिलेगा। इसके बाद मित्रों, एक न्यूज में यह भी बताया गया था कि एक चर्चा के अंतर्गत, चर्चा में कार्यक्रम के अंतर्गत जो टॉपिक है कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी का विकास, ये एक इंपॉर्टेंट है, जैव प्रौद्योगिकी का विकास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इस टॉपिक को भी सुने। तो मित्रों, एआईआर न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर, और मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि आज मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत से प्रेस क्लिपिंग्स हैं, आप लोग इत्मीनान से पढ़िएगा। मित्रों, इसमें मैं एक प्रेस क्लिपिंग्स पर चर्चा करने जा रहा हूं जो 29 तारीख को आपको प्रोवाइड किया गया था, मतलब ये 2 दिन पुरानी प्रेस क्लिपिंग्स है, और मैंने कहा भी था कि इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का प्रेस क्लिपिंग्स है, और जिसका टाइटल था उदारवादी ताकतों के सक्रिय होने का आ गया वक्त। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस में देखिए किताबों के माध्यम से और दूसरी चीजों से तो हर स्टूडेंट तैयारी करता है, लेकिन सवाल यह है कि आप अपना जो थॉट्स हैं, अपनी जो सोच है, जो विजन है, उसको कितना एक्सपैंड कर पाते हैं, उसको कितना विस्तृत कर पाते हैं, ताकि एग्जामिनर को यह पता लगे कि यू आर समथिंग डिफरेंट, आप जो है ना कुछ विशिष्ट हैं, विशेष हैं, स्पेशल हैं, डिफरेंट को ना कहें, यू आर समथिंग स्पेशल, यूनिक। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं जो लेकर के चर्चा करने जा रहा हूं वो बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे बात करूंगा, और वो ये कि पूरी की पूरी दुनिया में एक विचित्र सी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, विचित्र सी प्रवृत्ति ये दिखाई दे रही है कि जो राइटिस्ट फोर्स है, जिसको हम दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कहते हैं, और पॉलिटिकली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। देखिए, दक्षिणपंथी विचारधारा किसे कहते हैं आप, है ना, जो शब्दावली का जो स्पेशल ऑडियो है उसमें मैंने प्रोवाइड किया है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच, सेकंड बैच के स्टूडेंट तक को दिया गया है, तो उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लासेज में मैं इसकी बात करता हूं, मतलब यह है कि जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में सोचते हैं, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव, मतलब जो परिभाषा दी गई है कि उनकी अप्रोच बहुत प्रोग्रेसिव नहीं होती, वो मार्क्सिस्ट अप्रोच के लोग नहीं होते, अब ये सब चीजें दक्षिणपंथी लोगों की परिभाषा के अंतर्गत आती है। पूरे की पूरी दुनिया में ये हो क्यों रहा है, मतलब जो प्रोग्रेसिव फोर्स है, जिनको इसमें दिया है उदारवादी ताकतें, इसको प्रोग्रेसिव फोर्स कह सकते हैं, लिबरल अप्रोच के लोग, तो ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि वो एक्टिव हो। तो क्यों समय आ गया एक्टिव होने का, क्या दिक्कत हो गई है? तो इस आर्टिकल में दिया कि पूरी दुनिया में यह देखने में आ रहा है कि जो दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं वो मजबूत हो रही हैं, और मजबूत होने के इसमें इन्होंने तीन कारण बताए हैं और ये सही भी है। पहला तो कारण ये बताया है कि पूरी दुनिया में आप देखिए कि आर्थिक मंदी का दौर आ रहा है, तो आर्थिक परेशानियां लोगों को हो रही हैं। अब जब आर्थिक परेशानियां होती हैं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अब आप देखेंगे कि आप अमेरिका में कभी कभी खबर पढ़ते हैं कि साहब उस भारतीय पर हमला हो गया, उस सिख पर हमला हो गया, वो नौकरी वाला था उस पर हमला हो गया। तो जब आर्थिक मंदी आती है तो उस देश के लोग क्या सोचते हैं कि ये दूसरे देश के लोग हैं और ये हमारा रोजगार छीन रहे हैं, इनकी वजह से हमें आर्थिक परेशानियां हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग जो सोचते हैं कि दूसरे हमारी उस गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं, तो उसी के समर्थन वाले पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देने लगेंगे। कि जो पार्टी ये कहे कि साहब हम इस जाति को महत्व नहीं देंगे और उनको नहीं करेंगे और हम केवल अपने देश के बारे में देखेंगे, अपने इस जाति को या इस धर्म के लोगों को ही मानेंगे, तो जनता उनको सपोर्ट करने लगती है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो आउटसाइडर हैं, सो कॉल्ड आउटसाइडर हैं, ये हमारी इस बेकार स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो पहला तो आर्थिक मंदी रहा, दूसरा उन्होंने जो रीजन दिया और सही बात है कि आप देख रहे हैं कि आतंकवाद से पूरी दुनिया ग्रसित हो गई है। ये केवल भारत या दो चार पांच देशों की बात नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया ग्रसित हो गई है। तो अब लोगों को लगता है कि भाई ये आतंकवाद जो बढ़ रहा है, अब इसका मुकाबला कैसे किया जाए। तो वहां भी लोग फिर दक्षिण पंथ की ओर झुकने लगते हैं, राष्ट्रवाद की भावनाएं तेज होती है, हमारा देश और हम इसकी अच्छी बात है, हमारा देश तो है ही है और उसकी रक्षा की ही जानी चाहिए, लेकिन उस वो फिर बढ़ते बढ़ते फिर हमारी संस्कृति और हमारी जाति और हमारा क्षेत्र यहां तक वो बढ़ जाती है। तीसरा इन्होंने दिया कि अभी आपको मालूम है कि जब सीरिया और इधर सब डिस्टर्बेंस चल रहा है पूरे के पूरे मध्य एशिया और खास वेस्ट एशिया में भी, तो वहां से बहुत से शरणार्थी यूरोप की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो शरणार्थी उधर जा रहे हैं, तो ये जो देश है यूरोप के और जो बॉर्डर के जो देश हैं, अब इनको ये चिंता हो रही है कि भाई ये आएंगे, ये हमारे यहाँ इनको हम शरणार्थी रखना होगा तो इन पर खर्चा भी होगा, फिर ये दूसरे देश के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, फिर हमारे यहाँ वो अव्यवस्था फैलाएंगे, तो इनको नहीं आने देना चाहिए, इस तरह की एक सोच विकसित हो रही है। फिर आपने देखा भी साहब, इसको आप जोड़ दीजिए एक दक्षिणपंथी विचारधारा से, तो ये तीन रीजन दिए हैं। और फिर इन्होंने कुछ पॉलिटिकल घटनाएं भी दी हैं, जैसे फ्रांस है, पोलैंड है, हंगरी है, वियना है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क वगैरह देशों में धीरे धीरे जो दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियां हैं वो शक्तिशाली होती जा रही हैं। कोई लोकल म्युनिसिपल चुनाव में जीत रही है, तो कोई राष्ट्रीय चुनाव में उनको बहुत अच्छी जीत मिल रही है। तो इसको देखते हुए ये लग रहा है जैसे कि ये जो राइटिस्ट फोर्स हैं पूरी की पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रही हैं, और ये कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, और इनको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि जो लिबरल फोर्सेज हैं वो एक्टिव हो। तो मित्रों, ये हालांकि एक सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन की चीज नहीं लग रही है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, खासकर वर्ल्ड लेवल का पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये आपको मालूम होना ही चाहिए, ये आपको थोड़ा सा यूनिक बनाएगा। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही। अब मैं ईमेल पर आता हूं, सभी ईमेल लिखने वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी में से कुछ के नाम हैं, दीपक कुमार नैनीताल से, रजत बोलपुर से, जयकरण रायबरेली से, युवराज मुयार अमरावती महाराष्ट्र से, शैंकी कोट द्वारा उत्तराखंड से, विश्वजीत सरकार सितारगंज उत्तराखंड से, उत्कर्ष दीप पटना से, और सचिन कुमार अलीगढ़ से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, इसी के साथ ही सन 2015 का ये डेली ऑडियो आज यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, अगले साल फिर मिलेंगे। नमस्कार।